नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने कहा, हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में एक मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के लिए अनुकूल पर्यावास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक शुरुआती नुकसान से उबरे, दोपहर के कारोबार में बढ़त दर्ज। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में पूसा में बीजों की 109 नई किस्मों के विमोचन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किस्में कृषि में नवाचार का परिणाम है। किसानों के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि किसान धरती माता के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं और स्वेच्छा से कीटनाशकों को त्याग कर जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई किस्म के बीजों को एक छोटे खंड में प्रयोग करने और संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही इसका व्यापक उपयोग करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसानों से उनकी मुलाकात एक यादगार अनुभव है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक परिवार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ का अनऑर्गेनाइज सेल हो रहा है। अब इन्हें हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कपड़े की ओर ले जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उन ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% हिस्सेदारी भारत।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्होंने कारीगरों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पहल की सराहना की। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया है। अभिनेता आर माधवन ने नागरिकों से अपने घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा एक अभिनय चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा। तिरंगा हम सभी के लिए गौरव और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में जहानाबाद जिले के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में आज तड़के भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 16 घायल हो गए हैं। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि रात करीब 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद भगदड़ की घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रूपये की मदद देने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ईमेल अनुरोध की जांच के बाद सुनवाई के लिए तिथि घोषित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी पहचान मामले में पूर्व प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा खेड़कर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वीकृति दी है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया है। खेड़कर संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने की आरोपी हैं। पश्चिम बंगाल में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच आरजी कर आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। श्री घोष ने विरोध प्रदर्शन करने वाले मेडिकल विद्यार्थियों और अन्य कर्मचारियों को अस्पताल परिसरों में विरोध प्रदर्शन रोकने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी अपनी 4 मांगों के पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने आगे की जांच के लिए इस मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय वशिष्ठ के स्थानांतरण की घोषणा पहले ही कर दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अगर पुलिस अगले रविवार तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज शेयर बाजार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस को आरोपी ठहराया। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरे शेयर बाजार को गिराना और छोटे निवेशकों के पूंजी निवेश को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेश के संस्थागत निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकना चाहती है। हिंडनबर्ग पर प्रश्न उठाते हुए श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस का हिंडनबर्ग में निवेश है जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ प्रचार करता है।
जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो, विदेश का एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन। ये है इनकी सोच।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को हिंडनबर्ग जैसी निराधार और भ्रामक रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने में संयम बरतने की सलाह दी है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने एक वक्तव्य में अमरीकी शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सेबी के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का पता लगाने और समाधान के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। सेबी ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिभूतियों और उनके हस्तांतरण के बारे में सेबी अध्यक्ष ने समय समय पर आवश्यक जानकारी दी है। अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की भी पूरी जांच की गई है। शेयर बाजार नियामक ने यह भी कहा कि सेबी भारत के पूंजी बाजार की व्यवस्थित वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। अडानी समूह ने कहा है कि अमरीकी शोध और निवेश कंपनी की रिपोर्ट तथ्यों से परे है और व्यक्तिगत लाभ के लिए है। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी अपने खिलाफ लगाए गए हिंडनबर्ग के आरोपों की कड़ी आलोचना की है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज अंतर्दिवसीय कारोबार में शुरुआती नुकसान के बाद दोपहर बाद के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 223 अंक की बढ़त के साथ 79,928 पर कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53 अंक बढ़कर 24,420 पर था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 2024-2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। मालदीव की राजधानी में 9 अगस्त को समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया गया। ये साझेदारी सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाएगी। इससे भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। बांग्लादेश में एक सप्ताह तक कार्य बहिष्कार के बाद पुलिसकर्मियों ने सोमवार को कार्यस्थलों पर लौटना शुरू कर दिया है। अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए थे। तब से पुलिसकर्मी सुरक्षा चिंताओं के कारण काम पर नहीं आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। बैठक में पुलिस की वर्दी और लोगो बदलने का भी फैसला लिया गया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा रखी गई 11 मांगों में से कई को अल्पावधि में पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य मांगों पर कुछ समय बाद विचार किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले पर भारतीय ओलंपिक संघ की चिकित्सीय टीम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दिनशॉ पारदीवाला को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग की फाइनल स्पर्धा से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। एक रिपोर्ट।
IOA ने कल एक वक्तव्य में कहा कि कुश्ती, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेल में मुकाबले में वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रत्येक एथलीट और उनकी निजी कोचिंग टीम की होती है। IOA ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला की मुख्य भूमिका स्पर्धाओं के दौरान और उसके बाद एथलीटों के चोट प्रबंधन और उसकी रिकवरी में मदद करने की थी। इससे पहले 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में विनेश फोगाट का वजन थोड़ा अधिक होने के कारण उन्हें फाइनल से ठीक पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने खेल पंचायत न्यायालय में अपनी ओलंपिक में अयोग्यता के विरुद्ध अपील की और 50 किलोग्राम भार वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की। इस मामले में न्यायालय का अंतिम फैसला कल आने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं।
हमारे देश के सभी जिले इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन गए और अभी तक लगभग 3.55 करोड़ युवा और 2.35 करोड़ महिलाएं, 3.4 लाख शैक्षणिक संस्थाएं और 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा अभी तक बन चुके हैं। जिस तरह से नशे के कारोबारी शैक्षणिक संस्थाओं को अपना केंद्र बना रहे हैं, सरकार तत्परता से कदम उठा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
हाँ जी, सुनती हो? आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाथियों को एक अनुकूल प्राकृतिक वास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने कहा हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में एक मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत। हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के लिए अनुकूल पर्यावास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक शुरुआती नुकसान से उभरे, दोपहर के कारोबार में बढ़त दर्ज। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।